हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 185। ऋषभ की ऐसी हरकतें देखकर करण बहुत ही ज्यादा इरिटेट है, लेकिन फिर भी अभी इस वक्त उसने ऋषभ को कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता है अभी अगर वो कुछ भी बोलेगा भी तो ऋषभ कुछ भी सुनने समझने के कंडीशन में ही नहीं है, इसलिए कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए करण ने बस उसे सहारा देकर उसके कमरे में पहुंचाया और फिर उसके बेड पर लेटा दिया। ऋषभ अब तक लगभग बेहोश हो चुका है। करण ने उसके पैरों से उसके जूते निकाले और फिर उसको पैरों को सीधा कर दिया। करण ने उसे बेड पर लेटा दिया, फिर एक नज़र बेबसी से उसकी तरफ देखा और बोला, पता नहीं क्यों तुम ऐसा करते हो ऋषभ। आई डोंट नो, बट इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा रीज़न होगा, क्योंकि ऐसे ही तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इतने तो समझदार हो, ये मैं अब तक समझ चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। शिविका की लाइफ में पहले ही इतनी प्रॉब्लम है और वो सब कुछ अकेले झेलती है। तुम तक कोई बात वो आने भी नहीं देती, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर खड़े होकर ऋषभ की तरफ देखते हुए करण ने ये सब कुछ कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए ऋषभ होश में भी नहीं है। वो अब तक गहरी नींद में जा चुका है और उसके आगे बंद है, हाथ पर वही बेड पर फैले हुए हैं जिसे कि करण ने ठीक भी नहीं किया, और वो वहां से निकलकर वापस अपने कमरे में आ गया। उसने देखा कि शिविका चैन की नींद सो रही है। शायद कल रात तक उसके मन में जो भी बात थी उसकी कन्फेशन के बाद से अब उसे चैन की नींद आ रही है और वो बहुत सुकून कैसे सो रही है। लेकिन करण की नींद बिल्कुल उड़ी हुई है और इसीलिए वो दोबारा सोने के लिए नहीं लेटा, और सुबह के 6 बजने वाले थे, इसलिए करण रेडी होने के लिए चला गया। अगली सुबह हर्षिता का मोबाइल फोन रिंग हुआ। तब उसकी आंख खुली और उसने देखा कि रुद्र का फोन कॉल था। उसने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे, और इतनी सुबह रुद्र का फोन आना उसके लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, इसलिए उसने तुरंत ही वो कॉल रिसीव कर लिया। और जब उसने कॉल रिसीव किया तो उसे दूसरी तरफ से रुद्र की नहीं बल्कि किसी और की आवाज़ आई। हेलो, आप कौन हैं? कॉल की दूसरी तरफ से किसी ने सवाल किया, तो हर्षिता हैरान होकर तुरंत ही अपनी बेड पर उठाते हुए बैठ गई, क्योंकि रुद्र के मोबाइल से उसे कॉल आया था और कॉल करने वाला उससे पूछ रहा है कि वो कौन है, तो उसे ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी। और उसने कहा, आपने फ़ोन किया है, आप बताइए कि आप कौन, और ये तो रुद्र, मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड का नंबर है, तो आपके पास कैसे? हर्षिता रुद्र की आवाज़ अच्छी तरह से पहचानती है, इसीलिए जब किसी और ने दूसरी तरफ से बोला तो वो पहचान गई कि भले ही ये रुद्र का नंबर है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं है, और इसीलिए उसने ये सवाल किया। मैं बारटेंडर हूँ, आपका ही नंबर सबसे ज़्यादा बार डायल किया गया है उनके मोबाइल में, तो मुझे लगा आप कोई ख़ास होंगे, क्योंकि आपका नाम हर्षु नाम से सेव है, इसीलिए मैंने आपका नंबर डायल किया। जिसका भी ये फ़ोन है वो यहाँ पर बार काउंटर पर नशे में एकदम टल्ली पड़े हुए हैं कल रात से। मुझे लगता था कि चले गए होंगे, लेकिन अभी मैं साफ़ सफाई के लिए आया, लेकिन ये जनाब यहाँ पर ही हैं, तो क्या आप आकर अपने दोस्त को यहाँ से ले जा सकती हैं? कॉल की दूसरी तरफ से उस आदमी ने पूरी बात एक्सप्लेन करते हुए कहा। क्या इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है उसने? क्या उसके साथ और कोई भी नहीं है? हर्षिता ने कॉल पर बात कर रहे उस आदमी से पूछा। नहीं, कोई भी नहीं है, और हमें नहीं पता आपके अलावा हम किसको और कॉल करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर इसी तरह अलग अलग नाम से सेव हैं, या फिर काफ़ी सारे नंबर तो सेव भी नहीं है मोबाइल फ़ोन में, उस आदमी ने हर्षिता की बात का जवाब देते हुए कहा। तो हर्षिता ने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ, आप मुझे एड्रेस सेंड करिए। इतना बोलते हुए हर्षिता अब तक अपने बेड से उठ गई है और वो तुरंत ही अपना नाइट सूट चेंज करने के लिए गई, और तब तक उसके मोबाइल फ़ोन पर एड्रेस का मैसेज भी आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है, और वो वहाँ पर अकेले गया तो फिर वहाँ से वापस क्यों नहीं आया, और इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर ली उसने। ये सब कुछ सोचती हुई वो घर से बाहर निकली, और ड्राइवर वहाँ पर कार रेडी कर रहा था, तो उसने तुरंत ही ड्राइवर से साथ चलने के लिए कहा। और ड्राइवर भी हर्षिता को अब तक अच्छी तरह से पहचानता है और उसे भी घर के बाकी लोगों की तरह ही मानता है, इसलिए हर्षिता की बात सुनकर वो तुरंत ही उसके कहने पर कार लेकर चला गया। हर्षिता कार में पीछे बैक सीट पर बैठी हुई है, लेकिन करण ठीक उसी वक्त वो भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। सभी के उठने से पहले वो ऑफिस चले जाना चाहता है। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहता, और इसीलिए वो आज जल्दी ही ऑफिस जा रहा था। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने घर की एक कार को घर के मेन गेट से बाहर जाता हुआ देखा। उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त कौन घर से बाहर गया होगा, क्योंकि शिविका तो अभी अपने रूम में सो रही थी। काव्या को भी कोई स्कूल लेकर नहीं गया, क्योंकि उसका स्कूल 9 बजे का होता है, और ऋषभ को तो अभी कुछ घंटे पहले वो खुद ही उसके रूम में छोड़कर गया, और शिविका के पापा कहीं आने जाने के हाल में ही नहीं है। इसलिए सभी के बारे में सोचते हुए आखिर करण को लगा कि जरूर हर्षिता ही गई होगी, लेकिन फिर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो भी वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। लगभग 8 बजे काव्या को ज्योति ने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है, लेकिन वो करण और शिविका को ढूंढ रही है, क्योंकि अभी सुबह जब उसकी आंख खुली तब भी करण या शिविका में से कोई भी उसके पास सोया हुआ नहीं था। इसलिए वो उन दोनों के पास जाने की जिद करने लगी, लेकिन ज्योति ने जैसे तैसे उसे ये बोलकर समझाया कि वो रेडी होकर जाएगी तो फिर वो उसकी मम्मा उसे मिलेगी, और इसीलिए काव्या जल्दी से तैयार हो गई। लेकिन अभी भी शिविका वहां पर नहीं है, तो वो खुद ही शिविका के कमरे की तरफ भागती हुई आई। ज्योति भी उसके पीछे ही आई, लेकिन काव्या कहाँ रुकने वाली थी। उसने शिविका के कमरे का दरवाजा खोला जो कि लॉक नहीं था, और फिर अंदर आते हुए उसने तेज आवाज में चिल्लाया, मम्मा मम्मा, करण कहाँ है और आप मेरे पास क्यों नहीं सोई थी कल रात? आपको पता है ना, काव्या को मम्मा के पास ही सोना होता है। काव्या की आवाज सुनकर बेड पर लेटी हुई शिविका की आंख खुली, और आंख खुलते ही उसने सामने खड़ी काव्या को देखा जो कि मुंह बनाकर उसकी तरफ देख रही थी। तो शिविका ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ ही खींचा और प्यार से उसके गाल पर चूमते हुए कहा, सॉरी बेबी, वो मम्मा ना कल रात यहाँ पर ही सो गई थी काम करते करते, और तुम्हें तो करण ने सुला दिया था ना, अभी वो भी तुम्हारे पास नहीं है क्या? शिविका को करण वहां पर अपने रूम में नहीं दिखा, तो उसे यही लगा था कि वो जरूर काव्या के पास ही चला गया होगा रात को या फिर सुबह, क्योंकि करण को भी पता है जब काव्या सोकर उठती है और उसे करण शिविका में से कोई अपने आसपास नहीं दिखता है तो वो इसी तरह से रोने चिल्लाने लगती हैं। काव्या ने नहीं में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं मम्मा, करण भी नहीं है। कहाँ है वो? वो तो यहाँ पर भी नहीं है। काव्या ने इधर उधर देखते हुए शिविका से पूछा।
शिविका को खुद भी नहीं पता था कि करण कहाँ पर है, तो वो भला काव्या की बात पर क्या जवाब देती? उसे लगा कि शायद करण नीचे हो गया फिर बाथरूम में, लेकिन फिर उसने वॉशरूम में देखा, वहां पर भी करण नहीं था, और ज्योति ने बताया कि नीचे भी करण नहीं है। तो फिर शिविका थोड़ी सी उसके लिए परेशान हो गई और उसने काव्या से कहा, बेबी, आप ज्योति दीदी के साथ स्कूल जाओ और ऑफिस से आने के बाद मम्मा और करण दोनों आपके साथ ही सोएंगे, ओके? इतना बोलते हुए शिविका ने काव्या को समझा दिया। काव्या का मुंह तो बन गया, लेकिन फिलहाल उसने शिविका की बात मान ली और ज्योति के साथ वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद शिविका तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसने इधर उधर देखा, तो करण का मोबाइल फोन भी वहां पर रूम में नहीं था, इसीलिए वो समझ गई कि करण वहां पर नहीं है, वो कहीं चला गया है। लेकिन कहां? उसने टाइम देखा तो 9 बजने वाले थे, इतनी जल्दी तो वो भी ऑफिस नहीं जाता है, 10 बजे तक ही वो भी ऑफिस पहुंचती है। तो फिर उसे ये नहीं लगा था कि करण ऑफिस चला गया होगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक बार उसके पास कॉल कर लेती है। इतना सोचते हुए उसने अपना मोबाइल फोन उठाया तो देखा उस पर पहले से ही करण का मैसेज था, और उसने ये लिखा हुआ था, मैं जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ, कल का पेंडिंग काम पूरा करना है, तुम टाइम से आ जाना। बस इसके अलावा मैसेज में और कुछ भी नहीं था। शिविका को थोड़ा सा अजीब लगा कि करण इस तरह से इतनी जल्दी क्यों चला गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद होगा कोई जरूरी काम बचा हुआ होगा, और आज मीटिंग भी थी, इसीलिए शिविका भी जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। और फिर उसने अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट किया, कुछ देर उनसे बात की, फिर उनकी फिजियोथेरेपिस्ट और केयरटेकर से भी बातचीत की और उन्हें अपने पापा का ध्यान रखने के लिए बोला, और 10 बजने से पहले वो भी आखिर ऑफिस के लिए निकल गई। हर्षिता उसे आज वहां पर नहीं दिखी, लेकिन इस वक्त उसे हर्षिता का ध्यान भी नहीं था, उसका पूरा ध्यान बस करण में लगा हुआ है। और इसके अलावा जो कुछ भी कल रात उसने करण को बताया, उसे समझ नहीं आ रही कि करण ने कोई भी रिएक्ट क्यों नहीं किया उसकी इस बात पर, और सारी चीज़ों को इस तरह से हैंडल किया जैसे कि ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो, और यही सारी चीज़ शिविका को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो जल्दी से जल्दी करण से इन सब बातों को लेकर सब कुछ क्लियर भी करना चाहती है, लेकिन उसे पता है आज ऑफिस में भी उसे वहां पर इस बात को लेकर बात करने का कोई भी मौका नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी कम से कम करण उसकी आंखों के सामने रहेगा, तो उसके एक्शन और बर्ताव से ही कुछ ना कुछ तो वो समझ ही जाएगी। क्रमशः